So, to come back to the question, media technology hai ek high technology industry, high technology machines. मेरे को थोड़ी सी ये समझने में दिक्कत होती है कि how come all these years you are working, actually आपका connection किसी कंपनी के इंजीनियर्स या साइंटिस्ट से बहुत कम इंटरेक्शन है, क्योंकि आमतौर पे हम जब सब सोचते हैं कि वीडियो बनाते हैं या ये फिल्म्स होती हैं तो सब ट्रेंड लोग होंगे, पर आपका जो बातों से ये निकल रहा है कि ट्रेनिंग ऑन दी जॉब ही होती है लोगों की, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, मतलब आप कीर्तना को समझाने की अगर करो कि ये हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतनी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग लोग कर पाते हैं?
काम करते हैं तो काम के साथ साथ है ना, वो टेक्नोलॉजी के जब बेसिक पता हो जाता है तो उसके बाद आदमी करता रहता है, तो काम के साथ साथ अनुभव होता रहता है। बाकी कुछ मशीन को देख के, मशीन को देखते थे कि इसमें क्या है, फैसिलिटी आया है नया, पहले वाले में क्या था, अब नया में क्या हो गया, कैसे इससे अलग है ये चीज़। तो ये काम करते करते इस ज़्यादातर लोगों ने हम
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसको सीखने के लिए मतलब डायरेक्टली हाथ से काम करना पड़ता मशीन के साथ, उसके बिना नहीं हो पाता है?
नहीं, उसमें काम करना पड़ता है साथ में, हाथ के हाथ काम नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा ना आपको कैसे।
नहीं, मैं इन चीज़ों को जैसे हम लोग जो इस लाइन में हैं हमें तो मालूम है, बिना इसको छू के आपको समझ में नहीं आएगा ये काम, पर फॉर पीपल हु आर नॉट इन द इंडस्ट्री, जिनके लिए जो हमारी पब्लिक होगी इन चीज़ों को सुनेगी, उनके लिए बोलना पड़ेगा ये चीज़, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ।
तो मशीनों के साथ तो जितना ज्यादा काम करोगे आप जितना
तो काम मशीन कर... तो मेरा सवाल ही आता है जो कई बार हम शोर हुआ होगा कि मशीन को हम छेड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं उसके साथ
जी,
और गलती से कुछ हो गया और वो काम नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में कोई एक घटना है जो आप बता सकते हो कि ऐसे हुआ और उसको कैसे आपने सुझाया बाद में?
नहीं, ऐसा बहुत बार होता था कि बहुत चीजें हमें पता नहीं होता था कि बहुत सी सेटिंग्स चेंज हो जाती थी, वो हो जाती थी, फिर सुलझाने के लिए जैसे हमसे जो आगे वाले होते थे, सीनियर्स होते थे, उनके द्वारा फिर ये कि हमने ये किया और ये करने से ये वजह से ये हो गया, तो वैसे ही सुलझता था।
मतलब नौसिखिए ने कुछ कोशिश की और कुछ मशीन में गड़बड़ हो गया, तो फिर जो सीनियर है जो जानता है उस मशीन के वो आके सुझा,
वो सुलझाता।
हाँ, अब तो सवाल आ जाता है फिर कि ऐसे माहौल में अगर ऑफिस की हम सिचुएशन सोचे आज के तारीख में, और आपने कंप्यूटर को खराब, मतलब आपके कंप्यूटर में काम नहीं कर रहा है या आपने कुछ किया और उसमें काम नहीं कर, तो लोग तो सबसे पहले चिल्लाएंगे तूने क्या कर दिया, उन दिनों क्या होता था?
उन दिनों हमारा जो ऑफिस में जहाँ काम करते हैं वहाँ इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया था, वो इतना चिल्लाते नहीं थे, लेकिन एक थोड़ा सा पहले से उनको बताना पड़ता था कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं कर लूँ परमिशन, हाँ कर लो, देन उसके बाद वो अगर कुछ हुआ तो वो बीच में बता दे।
तो ये जो आप बता रहे हो इन अ सेंस यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग एटमॉस्फेयर,
हाँ,
ऑफिस की जो एक वर्किंग एटमॉस्फेयर, खासतौर पे एक टेक्निकल इंडस्ट्री में जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है, आपका ये मानना है कि क्योंकि हमें गलती करने की मौका दिया जाता था,
दिया जाता था और काम करते करते होता था। अब जैसे बहुत चीजें और भी हम चीजें होती टेक्निकल है, आज मोटरसाइकिल वगैरह सब वो लोग सीखने ही थोड़ी जाते हैं, कोई भी लर्निंग स्कूल में जाके थोड़ी ड्राइविंग सीख रहा है, उसी तरह से हम लोग करते थे, काम करते 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 वो चलाते चलाते जैसे ड्राइवर बन गया, तो उसी हिसाब से उसको पता चलने लग गया गियर इधर है, इधर है, इधर है, इस टाइप से जाना। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं थे उस टाइम, बहुत कम था इस लाइन, जो सीनियर जो काम करते आए वो अपना अपना एक्सपीरियंस बताते रहे और उस हिसाब से लोग काम करते गए।
तो आप जो कह रहे हो कि हमें बताना पड़ता था हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअली एक थोड़ा उदाहरण देंगे इसका, क्योंकि ये चीज नई,
जैसे मैंने एक बार था यूमेटिक मशीन नया आया, तो उसको राजू को मैंने, राजू शर्मा था हमारा सीनियर, कि जी मैं ये मशीन को थोड़ा देखना चाहता हूँ, तो पहले तो मना कर दिया, देन उसके बाद बोला अभी नहीं नहीं आए, बाद में बोला कि अब थोड़ा सा आप लिखते जाना जो भी कर रहे हो आप, कहीं ये नहीं कि ज़्यादा इधर उधर कर दो, छेड़छाड़ कर दो, पॉइंट्स अपने नोट्स बनाते रहे ना कि यहाँ हमने ये किया तो ये हो रहा है, ये किया तो ये किया, तो उस टाइप से भी करते थे हम लोग, नोट्स बनाते थे अपने और उसी के हिसाब से काम करते।
तो क्या आप कहेंगे कि मतलब जब आप लोग ऑफिस जाते थे काम करने, हर व्यक्ति के पास एक नोटबुक और पेंसिल होता था, पेन होता था, कि वो दैट वाज
ज्यादातर लोगों के पास अपना वो होता था, अपना हिंट्स वगैरह जो भी पॉइंट्स वगैरह,
क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आज के तारीख में बहुत अलग है, आजकल कोई नहीं करता, ये
नहीं करता, उस टाइम नोट्स बनाने पड़ते हर चीज का,
एवरीवन कैरीड नोटबुक एंड पेन, मतलब ये देखो वी आर ट्राइंग टू मेक अ डिस्क्रिप्शन,
और जो लोग बताते थे उनको सेल्फ अपने अपने हिसाब से हम लिखते भी थे उनको नोट्स को, कई बार टेक्निकली वर्ड्स होते थे उनके बारे में, उसका मींस क्या है, मतलब क्या है, कैसे काम होता है, और कभी भी जब फ्री होते थे सीनियर्स के साथ बैठते थे तो पूछते भी थे कि ये चीज़ क्या है, ट्रैकिंग क्या है, अब जैसे ट्रैकिंग वर्ड था, ट्रैकिंग क्या होता है कि वीडियो किस ट्रैक से जाता है, किस पाथ से लेता है, आपका हेड से ऐसे मैग्नेटिक हेड होता है उससे कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो उसको ट्रैकिंग बार से हम एडजस्ट करते हैं जो, तो उसकी लाइन टू लाइन मैच करने के लिए ट्रैकिंग हेड को अलाइन करना पड़ता है।
तो ये काफ़ी मतलब ये हैंड्स ऑन, बिना हाथ को आप ये इस्तेमाल करोगे, आप सिर्फ कागज़ में पढ़ के समझ में नहीं आएगा कैसे होता है, ये
कैसे होता है, उसको यूज करने पे ही ज़्यादा तो एक्सपीरियंस ये लेते थे कि जैसे ट्रैकिंग ये हम घुमाना करना प्लस माइनस में जाना, देखते थे कि इससे क्या हो रहा है उससे क्या हो रहा है।
तो एक तरीके से आप कह रहे हो कि मतलब जितना ज़्यादा हैंड्स ऑन वर्क एक्सपीरियंस होगा एक काम करने वाला उतना ही उस पर कौशल बनेगा उसका।
हाँ
मतलब इट इज नॉट लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर और रीडिंग अ बुक, बिल्कुल इस टाइप का नहीं था।
नहीं इस टाइप का नहीं था।
और आप ये बता रहे हैं कि मतलब जो आपका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो रही थी उसका आप अपने नोटबुक में अपने लिए नोट्स बनाते थे।
अपने लिए नोट्स बनाते थे।
ठीक है। ओके। अब आपने बताया 85 में आपने शुरू की थी।
84 में।
एंड टिल 95 यू वर डूइंग एट सेंडिट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करते थे
उसमें, रिपेयर में वैसे सेंडिट में 99 तक था। देन उसके बाद हमने अपना सेल्फ मतलब काम करना शुरू कर दिया अपना।
85 टू 99
हां
सेंडिट में थे।
हां 84 84
84 टू 99 सेंडिट, और उसके बाद
सेल्फ अपना
99 ऑनवर्ड्स। पर ये 84 टू 95 इन सेंडिट आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस ज़्यादा करते थे।
रिपेयर मेंटेनेंस भी था, एडिटिंग भी किया, उसके बाद कैमरा भी करते थे बीच बीच में।
पर 85 के बाद
लोगों को ट्रेनिंग्स बताते भी थे, केबल्स वगैरह के बारे में है, आउटपुट्स वगैरह है, कैसे सिग्नल्स वगैरह के बारे में।
तो मेरे को ये बताएंगे कि मतलब आपको जैसे ट्रेनिंग कोर्स में दिए, जो लोग ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको तो लगा होगा कि कैलाश जानता है, वो ट्रेनिंग दे सकता है। इन व्हाट वे उनको लगा कि मतलब किस तरीके से उनको समझ में आया कि कैलाश इज अ गुड ट्रेनर, कोई उदाहरण है ऐसा जो आप बता सकते हैं?
समझ जब क्या, जब ही वो उसको उनको जो हम बताते थे कोर्स वगैरह टेक्निकली सारा, तो उसी को देख के कहते भाई ठीक, इन्हीं हमसे ही सीखते थे वो टेक्निकली पार्ट।
नहीं नहीं वो तो ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ये जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने की, क्योंकि माहौल ये है कि बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं सेंडिट में, उनमें से मे बी 10% ही प्रोफेशनली ट्रेंड थे, 90% ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही थी।
शुरू में तो हमारे उसमें 10% भी नहीं थे वहाँ पर,
उससे भी कम थे। ठीक है, अब ऐसे माहौल में जिसमें 90-95% लोगों की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, कैसे करके वो एक या दो लोगों या चार लोगों को चुनेंगे जो ट्रेनर बन सकते हैं?
वो जो सीनियर पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता था उसी में ट्रेनिंग्स में जैसे एक एक कोई चैप्टर पे या बोल के बात करने से उनका अनुभव लेके ही होता था। वो देखते थे कि ये इस चीज़ में अच्छा अनुभव है इसका, तो वो चीज़ को।
तो मतलब जो ऑर्गेनाइजर थे बाद में ट्रेनिंग प्रोग्राम के, वो ये ट्रेनिंग सेशन में बैठते थे?
हम भी बैठते थे, पहले बैठना शुरू किया, देन हमसे पूछते थे क्या सीखा आपने। जैसे मैं ही था, मेरा वर्क था, जॉब पे था मैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ जहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते थे तो मैंने डायरेक्टर से बात करी कि मैं मेरे अगर मैं 1-2 घंटा एक्स्ट्रा आपको शाम सुबह में काम में लगा दूँ, 2-3 घंटे का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें मैं बैठ सकता हूँ क्या? तो वहाँ हम बैठते थे। देन बाद में अवीक का ऐसा था कि वो हर 1-2-4 दिन में पूछता रहते थे कि भाई आपने क्या सीखा, फिर आप वहाँ बैठे क्या क्या हुआ, क्या हुआ आपने, क्या देखा, क्या बनाया, नोट्स वोट्स लिखा कहीं, कुछ है आपके पास, क्या क्या सीखा आपने? फिर वो कभी कभी ऐसा करता था कि आप ये जो सीखा आप थोड़ा सा हमें सबको समझाइए, बताइए कैसे कैसे क्या क्या सीखा आपने। तो उसी में वो देखते थे कि ये हाँ ये ठीक से बता रहा है, तो देन उसके बाद।
तो मतलब एक तरीके से आपके ये जो बोल आपने ये जो समझाया मतलब एक छवि बन गई कि मतलब कैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम की सिलेक्शन होता था जो लोग ट्रेनर बनेंगे। और ये इसलिए मेरे को लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी एक तरीके से अनट्रेन्ड हैं, ट्रेनिंग काम से ही हो रहा है। तो कुछ लोग भले बहुत लोग ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं, उनमें से बहुत ही कम होते हैं जो एक्चुअली फिर से ट्रेनर बन सकते हैं। सब लोग एवरीबॉडी कैन नॉट बिकम अ ट्रेनर, ओनली 10 में से 2 या 3 ही बन सकते हैं,
2-3-4-5 जो भी है।
तो ये वाला मैं कैसे करके इसको सिलेक्ट करते थे, क्योंकि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ट्रेनर का एक तरीके से कनेक्टेड है आपकी जो वर्क प्रैक्टिस की वर्क एटमोसफियर है, जिसमें आप कह रहे हो कि यू आर अलाउड टू क्रिएट अ प्रॉब्लम विद द मशीन, बट आपने बोला हाँ वी वर अलाउड, बट हमें पहले बताना पड़ता था कि हम ये करने वाले हैं इस मशीन पे,
ये करने वाले और ये किया हमने। उसको स्टेप वाइज लिखना पड़ता था।
सो सी दिस इज वेरी, आजकल नोबडी वुड डू दैट। आजकल लोग बोलेंगे कि मैंने ये ट्राई किया नहीं हुआ, अरे भैया ट्राई किया किया जरा एक बार, एक के बाद एक तो बता दो स्टेजेस तो बता दो। सो दिस इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली।
मैं स्टेप वाइज लिख के रखते थे कि हमने ये बटन छेड़ा, इससे छेड़ने से ये हुआ, ये सेटिंग हमने छेड़ी, इस बाद में ये दिखाया, उसमें ये किया।
पॉज करो। यू नो पॉज कर दिया रिकॉर्डिंग। तो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसके,
जैसे कोई भी इक्विपमेंट नया आता था, कैमरा आया या कोई VTR आया, उसको हम 1-2 दिन के लिए वहाँ पर, क्या होता है कि एक दो अलग अलग था, एक तो प्रोडक्शन टीम थी, एक मेंटेनेंस और गाइड करने वाली टीम होती थी। तो हमारे पास जब मशीन आती थी हम 1-2 दिन देखते थे, उसको चलाते थे पूरा हर एक स्टेप वाइज देख लिख के कि इसमें क्या क्या है, कहाँ कहाँ कैसे हो सकता है। तो हर एक इक्विपमेंट जब भी आता था उसका पूरा हम पहले पूरा
तो आपने पहले
स्टडी करते थे पूरा।
उसके बाद फिर क्या करते हैं?
देन उसके बाद प्रोडक्शन में जाती थी वो, जैसे कैमरा है या वो दूसरे के हाथों में जाता था।
तो फिर जब पहली बार किसी प्रोडक्शन टीम के पास गया,
हाँ,
तो आप लोग साथ में होते थे?
हम साथ में होते थे और जब भी उनको कोई दिक्कत होती थी हमसे बुलाते थे, पूछते थे कैसे कैसे।
तो जैसे मान लो फील्ड में कैमरा निकली है फील्ड में, तो आपके वो प्रोडक्शन टीम की भी कोई जाती थी
उसके साथ? टेक्निकली एक बंदा जाता था पहले, सभी टीम ग्रुप के साथ
एक टेक्निकल बंदा,
एक टेक्निकल टेक्नीशियन जाता था, क्योंकि उन लोगों का काम अलग होता था। प्रोडक्शन वाला वो अपना फिल्म या वो फील्ड का वो देखता था, उसको टेक्निकली इशू का पता नहीं होता था। और पहले इशू भी बहुत आते थे टेक्निकल, क्योंकि इन्वायरमेंट का ये वो बहुत फर्क पड़ता था, टेक्निकल इशू भी बहुत होता था पहले।
सो एक तरीके से देयर वाज अ, अगर मैं बता सकूं, दिस वाज अ ट्रांसमिटिंग द लर्निंग, आपकी जो मेंटेनेंस टीम की जो सीख है वो प्रोडक्शन टीम को आप ऑन द जॉब देते थे।
ऑन द जॉब हम बता रहे
ओके। तो इसका ये आपने जो अपने ये जो ऑन द जॉब जा रहा है कोई और समझा रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो गई प्रोडक्शन टीम को, तो उस समय जो अपने नोटबुक्स होते थे वो भी ले जा सकते, ले जाते थे क्या समझाने के लिए?
वो नोट उसके मशीन के बारे में पूरा जो नोट्स होता है वो लेके जाते थे, नहीं तो उसकी ऑपरेटिंग मैनुअल्स आती थी वो लेके जाते थे ना, अपने नोट्स भी नहीं तो कहीं कोई दिक्कत हुई तो उसमें से देख के देखना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था उसके बारे में, क्योंकि सब बातें तो याद नहीं रही है, भी बहुत होता था हर में अलग अलग,
और मैनुअल भी तो मोटे
मैनुअल, सर्विस मैनुअल तो बहुत मोटा मोटा होता था,
वो तो इतने मोटे मोटे,
हाँ सर्विस मैनुअल बहुत मोटा सर्किट पूरा
ओके। बिसाइड्स टू कम बैक टू द थीम ऑफ जो वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग एटमॉस्फेयर ऑफ स्टूडियोज एंड ऑफ ऑफ मतलब द वर्किंग एटमोसफियर इन विच दिस टेक्नोलॉजी वर्कड, तो अगर एक तरीके से देयर वाज एन ओपननेस, एक खुलापन था
बिल्कुल। हाँ,
नाउ वो खुलापन सिर्फ मशीनों और मशीन मैकेनिज्म्स के बारे में ही होता था या बाकी चीज़ें जैसे कैसे बैठ के खाते थे लंच टाइम पे, या जैसे बात करने के तरीके होते थे उसमें भले एक मालिक है और बाकी जूनियर्स हैं, पर व्हाट वाज द वर्किंग और ऑफिस कल्चर जिसको कहेंगे
उस टाइम का? ऑफिस का कल्चर था जो बहुत ही डिफरेंट था, सब लोग एक साथ मिलना जुलना बैठना और लंच वगैरह के टाइम भी प्रोफेशनल बात होती रहती थी। उस टाइम गाइड करते थे जैसे हम ही थे, हमें लोग उसे पूछते रहते थे, हम साथ साथ में जैसे हमें हिंदी थी अंग्रेजी नहीं आती थी, अंग्रेजी वर्ड होते तो उन वर्ड के इसका मीनिंग क्या होता है वो क्या होता है, तो वो लोग उस टाइम अच्छी ठीक से टैकल करते थे, मतलब ये नहीं करते थे कि ये नहीं, तो कल्चर बहुत ओपन था, बढ़िया कल्चर था ऑफिस।
और ये चीज आप सिर्फ अपने ही जहाँ पे आपने काम किया उसी संस्था में था या दूसरे?
ज्यादातर स्टूडियोज में ऐसे ही था, क्योंकि दिल्ली में मैंने जहाँ तक देखा ज़्यादातर लोग थे वो कुछ इंस्टीट्यूट से नहीं थे, सब लोग ऑन, तो उनको सब अगर चीज़ें नहीं, अगर ओपनली नहीं समझाई जाएंगी नहीं बताई जाएंगी तो फिर वो चल नहीं पाएगा ना।
तो जैसे हम जैसे लोग आते थे क्योंकि हम एक तरीके से प्रोडक्शन टीम वाले थे,
आप जैसे
हमें तो प्रोग्राम प्रोड्यूस करना है,
प्रोग्राम
तो हमें मशीन की मेंटेनेंस और उसका हाउ इट वर्क्स उसमें ज़्यादा घुसना नहीं पड़ता था, पर फिर भी वो लोग जो काम करते थे प्रोडक्शन वाले जो बाहर से आते हैं किसी स्टूडियो में या किसी कैमरा यूनिट के साथ जाते, उन लोगों के साथ क्या रिश्ता था जो मशीन्स का देखभाल करते थे?
उनके साथ भी रिश्ता अच्छा होता था, जो प्रोडक्शन टीम काम के लिए आते थे वो भी सब पहले भाई हेड वगैरह साफ है, ट्रांसपोर्ट सही है, कहीं मेरी टेप डैमेज तो नहीं, उनके तो बहुत सारे टेंशन होते थे क्योंकि वो उस मशीन को उसका पता नहीं होता था, तो उसके साथ हमें ही गारंटी देनी पड़ी, नहीं इसका ट्रांसपोर्ट वगैरह सही है कहीं मेरा मीडिया तो नहीं खराब हो जाएगा, उनका ये बहुत इशू होता था। सबसे ज़्यादा तो मीडिया का इशू होता था उस टाइम, क्योंकि टेप ट्रांसपोर्ट वगैरह में कहीं उलझ गया, टूट गया, कुछ हो गया तो चीज़ निकल गया, क्योंकि फिर उस दोबारा से वो चीज़।
और मेरे को जैसे याद है एक किस्सा मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये टिहरी बांध बन रही थी, आखिरी दिन थे और पुरानी टिहरी शहर डूबने वाली थी, और यूसुफ और हम गए थे S-56 से कैमरा यूनिट लेके, कि मतलब दिस वाज द लास्ट, इनफैक्ट इट वाज 31 दिसंबर 1999 हम टिहरी में थे, एंड द टाउन वाज गेटिंग ड्राउंड देन. तो एक ही होटल में एक कमरा था जो अवेलेबल था, बाकी सारा टाउन वाज ऑल, लोग छोड़ के चले गए थे, ऑल द डोर्स हैड सील 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 सील. तो हम लोग को एक होटल में एक कमरा मिला था रहने के लिए, ठीक है. तो अगले दिन हम गए तो डैम बन रहा है ना, तो फ्रॉम 3,000 feet डाउन देर आर दिस ह्यूज डंप ट्रक्स दैट वर कमिंग अलोंग द साइड ऑफ द माउंटेन, ऊपर ले जाके मिट्टी डाल रहे थे फॉर, बिकॉज इट वॉज एन अर्थ फिल्ड डैम, सो यू हैव टू ब्रिंग द रॉक्स फ्रॉम अंडरनीथ टू द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड ड्रॉप इट देयर एंड देन द डैम वॉज बींग बिल्ट अराउंड इट. सो दैट काइंड ऑफ डैम यू मेक द वॉल्स एंड फिल इट अप विद रॉक एंड रबल. तो हम लोग उसको शूट करने गए और मेरा दिमाग बन गया, क्योंकि उसमें जो एक ट्रक का पहिए का साइज जो है ना, वो जो आपको ऊपर वाला शेल्फ है उसकी रोड से उतना हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द ट्रक, एंड देयर यूज्ड टू बी 32 व्हील्स ऑन दीस ट्रक्स, मतलब 100 टन्स ले जाते थे एक साथ ऊपर. और दिस वाज ऑन अ रोडवे गोइंग की चार ट्रक एक साथ साइड बाय साइड, इतना चौड़ा था वो रोड जो बनाया था. तो मैन और इट वॉज लाइक अ कन्वेयर बेल्ट, हर एक मिनट आधे मिनट में एक ट्रक जा रही थी, कम से कम 100-200 ट्रक होंगे जो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे ले जा रही थी इसको बनाने में. तो मैंने इसको बोला कि हमारे S-56 अटेंडेंट को, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, यूसुफ कोले, वी नीड अ शॉट, आप रोड के बीच में जाओ. हाँ, क्योंकि आई स्टूड देयर फॉर लॉन्ग टाइम, आई सॉ कि ये रोड है, वन ट्रक पे, इट इज़ लाइक अ रेलवे लाइन. हाँ, तो ट्रक्स उसी रूट पे जा रहे, बीच में गैप है. हाँ, मेरे को इस गैप में जाके खड़े हो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, नथिंग विल हैपन टू अस, बट आई वॉन्ट अ शॉट ऑफ यू एट द बॉटम बिकॉज यू आर लुकिंग राइट डाउन द हिल. हाँ, एंड द नेक्स्ट शॉट विल बी रिवर्स, यू आर लुकिंग इन टू द स्काई एंड यू आर सीइंग दिस बिग व्हील्स कमिंग फ्रॉम फार अवे विद द ट्रक आपके साइड से. बहुत बढ़िया शॉट बना था, ठीक है, शॉट आ गया, हम लोग बहुत खुश और चले गए. दिल्ली पहुंचे, सबसे पहले एडिट करना था, एडिट कर लिया और टेप हमने, मतलब वो टेप से हमें कंप्यूटर में डाउनलोड करना था ना एडिटिंग. हाँ. के लिए, नॉनलीनियर एडिट के लिए,
नॉनलीनियर के लिए. हाँ,
सो द टेप्स हैड टू बी कॉपीड ऑन टू द कंप्यूटर, सो द टेप्स वर कॉपीड. अब दिस ग्रेट एडिटर और हूएवर हु वाज देयर, आई फॉरगॉट, बहुत गाली दी. द टेप जिसमें सारा ये फुटेज था ना, ये जो बड़ा मतलब
ट्रक
वाला 20 मिनट का फुटेज था हमारा, उसके ऊपर उसने कुछ और डंप कर दिया, बिकॉज वी हैड टू डू मेक कॉपीज. तो उसने कहा कि हाँ, इसका तो डंप हो गया, इसके ऊपर मैं कर देता हूँ, इसमें उसको मालूम था कि इसमें खाली है एंड में, उसने उसके आगे ना करके शुरू से ही डंप कर
दिया, से डंप कर
तो
दिया.
पूरा हमारा कंटेंट इरेज हो गया, राइट, एंड न्यू वॉट एवर वी वर एडिटिंग दैट गॉट पुट, बट द ओरिजिनल वी लॉस्ट. मतलब उसको तो खूब गाली दी हमने, गाली इसको करने के लिए मेरे को इन दोनों को
रिस्क लेना पड़ा,
मतलब रिस्क लेना पड़ा, पटाना पड़ा. हाँ. यूसुफ और इसको, उसने बोला मैं इन ट्रकों के बीच में नहीं जाऊंगा. हाँ. मैंने कहा मैं इतनी देर से खड़े होकर देख रहा हूँ, उन दोनों के बीच में 10-15 फुट की गैप होती है, आराम से आप खड़े होकर कर सकते हो, जैसे रेलवे लाइन में ट्रैक्स के बीच में गैप होती है जो एक खड़ा हो सकता है बंदा, वो दिल्ली बस स्पेस, वो भी पागल नहीं है जो ये ट्रक चलाते हैं.
तो उस टाइम भी ऐसे ही तो एक्सपेरिमेंट कर करके, तो शॉट्स का भी ऐसे ही था, कोई फिक्स नहीं था, बुक्स ने नहीं लिखा हुआ कि आप जाओगे बीच में लगाओगे, ये फिक्स नहीं होता.
सो दिस ये रिकॉर्ड हो रहा है
और हाँ सर.
तो आप लोग, मतलब मेरा सवाल ये है कि इस समय की अप टू डेट कैसे रहते थे नॉलेज में, मतलब काम के दायरे में या रिफ्रेशर कोर्स होता था या क्या होता था?
टेक्निकली तो जब भी कोई इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी कुछ चेंज होता था, तो पहले जो टेक्निकल टीम होती सीनियर, वो उसकी स्टडी करते थे, देन उसके बाद सभी को एक बार ट्रेनिंग देते थे, बताते थे कि ये जो मशीन्स आई है, यह हमारे पास कैमरा आया है, इसमें ये है, और इसके लिए ये है ध्यान रखना होगा, ये प्रिकॉशंस वगैरह रखनी होगी आपको, या इस एनवायरनमेंट में ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, ये वाला कैमरा आप आउटडोर ले जाते थे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, ये इसमें हीट का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ट्रेनिंग में एक तरीके से आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा होता था,
बड़ा हिस्सा हर चीज का, इक्विपमेंट्स वगैरह। तो ये ट्रेनिंग सबसे पहले तो हैंडलिंग का ट्रेनिंग होता था कि कैसे हैंडलिंग करोगे इस चीज को आप, और प्रोडक्शन वालों के लिए भी यही होता था कि उनको भी फिर बताया जाता कि आप इस पे काम करोगे, लेकिन एडिटर्स कर रहे तो इस तरह से आप करना, बटन्स को इस तरह से। कई बार क्या होता, किसी कंट्रोलर्स के सॉफ्ट बटन होते थे और किसी के हार्ड होते थे पहले वाले, तो ठक मारते थे, अब इसमें आप ठक ठक नहीं मारोगे, आराम वाला करोगे। तो ये ट्रेनिंग से होती थी उनकी, सब बताना पड़ता सबको।
और हैंडलिंग ट्रेनिंग, और उसके बाद फिर क्या होता था हैंडलिंग ट्रेनिंग के बाद, जब नया इक्विपमेंट आया
तो उसके हैंडलिंग के बाद में प्रोफेसर उसको ऑपरेटिंग की बताया जाता कि कैसे आप वो ऑपरेट करने वाला पार्ट होता था, और उसके बाद जो भी यूज करता था जो उस टाइम जो भी अगर ऑन स्पॉट कोई दिक्कत आती थी तो ट्रबल शूट होता था, कोई ऑन स्पॉट अगर क्या हो रहा था, ये ट्रबल आ रही है वो आ रही है, तो उसके लिए क्या क्या है।
तो इसमें मैं ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपने कहा कि अर्ली टेक्नोलॉजी में लोग कई बार अपने आप जुगाड़ लगा के कुछ क्रिएट करते थे, जैसे वो की इन करने के लिए किसी ने वो बनाया। ये जो ट्रबल शूटिंग के टाइम के बाद ही तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो आएगा ना, तो ट्रबल शूट से या तो आप जो मैनुअल में लिखा है वो करोगे, और या आपको पता चला कि मैनुअल में तो इसका कोई जवाब नहीं है तो फिर आपको कुछ निकालना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ उदाहरण है जो आप बता सकते हैं?
बहुत बार ये होता था कि जैसे मैनुअल में कुछ लिखा होता था लेकिन जो फील्ड में ऑन स्पॉट जो और कुछ होता था मैच नहीं करता था उसके अकॉर्डिंग, तो वो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ही फिर हम उसको करते थे।
तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें कुछ ऐसा हुआ आपके साथ और आपने या किसी और ने सजेस्ट किया और उसको आप लोग उस समय सॉर्ट आउट करके आगे चलाए काम, उसको कुछ उदाहरण दे सकते हैं?
अभी तो कोई ऐसा तो
है, मैं इसलिए सोच रहा हूँ इसको इसलिए सोच रहा हूँ कि आपके पास जो कलेक्शन है मशीनों का उसको ध्यान में रखते हुए कोई एक अगर इंसिडेंट निकल आए तो फिर उस मशीन की यूसेज के बारे में कुछ इंसिडेंट बन सकती है। यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? थिंक ऑफ द डिफरेंट वेज एंड दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, थिंक